से भक्ति हृदय मंगल महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे गुरु जी के संबंध में हमें कुछ
जो कुछ हम लोगों का विचार है सब बोला। वे इतने भाव में बह गए उनको याद ही नहीं रही पहले, जो आज की तिथि हम लोगों के गुरुदेव जी का आविर्भाव तिथि है। किंतु बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने हमारे सांप्रदायिक विचारधारा को बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किया। यही सचमुच में यही तो चाहिए था। अंत में फिर जब इनको याद आई ऐसे भाव में बहने के बाद में, तो थोड़ा सा लौट करके तो फिर हम लोगों के गुरु महाराज जी के संबंध में भी उन्होंने बहुत सुंदर कहा। अब आप लोग हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी से हिंदी भाषा में आप लोग ब्रजवती भाषा में आप लोग श्रवण करें। तो हमने वैष्णव प्रमुख से बहुत कुछ सुना। हम लोग 3-4 बजे शाम को बैठेंगे, सभा होगी और उसमें वैष्णव लोग थे अच्छी तरह से उनके संबंध में कुछ प्रकाश करेंगे। इसलिए आप 4 बजे वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 4 से 6 बजे 2 घंटे तक उनके संबंध में हम लोग, अभी ठाकुर जी का भोग भी हो गया है और बहुत विलंब भी हो गया है, करीब 1 बज चुका है, इसलिए आप समय हम लोग नहीं लेंगे। केवल ये बतलाना चाहता हूँ, एक तो एक बार किसी हमारे भक्त नित्य लीला प्रश्न विष्णुपाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के किसी प्रिय शिष्य ने हमसे पूछा, तुम्हारे गुरु जी किनसे संन्यास लिया? किनसे संन्यास लिया? मैंने कहा जी आप जानते नहीं हैं। अरे तुम जानता है कि नहीं जानता ये बतलाओ। मैंने कहा जी ऐसे पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट हो भक्ति शक्तिधर महाराज जी से उन्होंने संन्यास लिया। कहा जी बेवकूफ तुम कुछ नहीं जानता। कहा जी कैसे? अरे वहाँ पर जो नवदीप में
प्रौढ़ा माया
तला में जो प्रभुपाद को मारने के लिए लोगों ने निश्चित किया और उस समय प्रभुपाद जी को अपना कपड़ा सारा दे दिया और उन्होंने अपना सारा कपड़ा और दंड भी उनके हाथ में दे दिया, तो कौन तुम्हारा गुरु का शिक्षा ये संन्यास गुरु हुआ? हमने कहा जी वाह ये बहुत सुंदर बात कहा। गुरु जी ने भी कहा था जी, प्रभुपाद ने हमको स्वप्न में कहा था जल्दी से तुम संन्यास लो, जल्दी संन्यास लो। 2 बार उनको स्वप्न दिया, तो फिर तृतीय बार जब कहा जैसे तुम हमारे मिशन को ध्वंस करेगा तुम नहीं लेता अभी, तब उन्होंने फिर प्रत्यक्ष रूप में जा करके परम पूज्यपाद शशिधर महाराज जी से उन्होंने फिर से संन्यास लिया कठवा ले जाने के। तो सचमुच में हम लोग ऐसा ही समझते हैं। अभी महाराज जी और हमारे ये महाराज जी गुरु महाराज जी के संबंध में बतला रहे थे भगवान के प्रति कैसे निर्भर थे। शरणागति में रक्षस सती थी विश्वासो गोपित्वे वर्णम यथा, कृष्ण हमारे पालन पोषण करते हैं वही हमारे एकमात्र रक्षक है। यदि ऐसा भाव आ जाए तो वह सर्वत्र निडर रहेगा, उसको किसी विषय का डर नहीं रहेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी किस प्रकार से प्रभुपाद जी के ऊपर में और कृष्ण के ऊपर में महाप्रभु जी के ऊपर में अपना सब कुछ भार दिया था, इसलिए परम निर्भीक थे, सत्य के निरपेक्ष वक्ता थे, कहीं कहीं नहीं डरते थे मायावादियों के गढ़ में। अब विशेष करके जहाँ जहाँ बंगाल में रामकृष्ण मिशन इत्यादि का ये सब बहुत अधिक प्रभाव, उनके गढ़ों में जाकर के उनके विरुद्ध में उनके विचारों को खंडन कर जो जिस रास्ते से जाता है वो भगवान के पास में पहुँच जाता है, इस विचार का खंडन किया। पोस्ट ऑफिस में कहीं भी पत्र दे दो वहाँ पर मिल जाएगा, हम अलग अलग एड्रेस लिखेंगे तो एक जगह पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता। उनके विचारों को निर्भीकता से खंडन किया। कर्मवादियों के आसाम में असम प्रदेश में वहाँ हंकर देव जी का विचार, वो मांस मछली अंडे गोश्त सभी खाएंगे और वैष्णव भी हैं और अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा जी की पूजा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। महाराज जी ने उनके गढ़ में जाकर के एकदम खंडन किया और वो लोग पत्थर और ये सब लेकर के बरसाने लगे। गुरु जी ने कहा तुम इसके द्वारा हमारा और प्रचार कर दिया, और वहाँ के जितने लोग थे सब उन लोगों के विरोधी होकर के लाठी और पत्थर उठा लिए, जिस लोगों को हम मार डाले, बस वो लोग शांत हो गए। ऐसे ऐसे जगहों में सर्वत्र उन्होंने प्रेक्ष भाव से उन्होंने प्रचार किया।
बाल्य अवस्था की एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बतलाऊं। एक दिन ये शाम को रात में कुछ 8 बजे रात में अपने घर में पहुंचे। इनकी मैया थी, जमींदारी की लड़की थी और बड़ी तेजस्वी थी। उन्हीं का ये भाव इनमें आया तो वो लठिया लेकर के दरवाजे पर खड़ी है, बोले तू कहाँ गया था। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष की। कहाँ गया था तू? नहीं बोले। अजय अभी तुमको बेच से मारूंगी, तू बतला जे काम क्यों, रात में तुम क्यों रहा, अभी तक आया नहीं, 8 बज गया, तू बतला जल्दी से। जब उन्होंने बार बार कहना आरम्भ किया तो उनकी मैया को इन्होंने उत्तर दिया, मैया मेरी मैया मेरी बात सुन, एक यहाँ पर अच्छे खानदान की एक लड़की है, स्त्री है, महिला वृद्ध हो गई हैं, उनको बुखार चढ़ा हुआ है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं और उनको देखने वाला कोई नहीं। तुमने हमको पैसा दिया था स्कूल में खाने पीने के लिए, उसको एकत्र मैंने किया, मैं कभी नहीं खाता हूँ, आज तक कभी नहीं खाया, मैं उन सबको एकत्र करके और उसी से बाजार से चावल ले आया, किसी घर से कुछ मांग करके भीख मांग करके लाया और अभी उसकी दवा दारू डॉक्टर को दिखला करके अब थोड़ी सी अच्छी हो गई, तब मैं मैया। बस मैया की आंखों में आंसू छल छल आए और उसको गोदी से ले लिया। बचपन से ही ऐसे दयालु थे, इसी दयालुता के वजह से हम लोग जैसे और पाषंडी कहें अपने को या क्या कहें, मगध में देश में हम लोगों का मेरा जन्म हुआ, जहाँ जरासंध और बुद्ध देव जी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और हम लोगों के भी वहाँ से कैसे चोटी पकड़ करके ले आकर के चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में उनके चरण में हम लोग। जब उनकी याद आती है कि मैं कहाँ था, हमारे जैसे लोग कहाँ थे और इन्होंने कैसी शक्ति प्रकाश करके कहाँ कहाँ से हम लोगों को पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु जिस काम के लिए आए थे अभी इन लोगों ने बतलाया। अनर्पित चरिन चिरात करुणे अवतीर्ण कलो समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसान सा भक्ति। उन्नत उज्ज्वल की शोभा को श्री को देने के लिए आए और देखो तो हम लोग कहाँ नीच व्यक्ति कहाँ कहाँ जन्मे और ले आकर के महाप्रभु के इस प्रेम में हम लोग को कुछ अधिकार देने की चेष्टा कराई, उसमें प्रवेश करा। उन्होंने हमसे एक बार कहा ये हम लोग हमारे प्रभुपाद जी हम लोगों ने बहुत जगह प्रचार किया, हिंदुस्तान के इधर भाग में भी प्रचार किया, किंतु तुम्हारी बुद्धि देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे महाप्रभु जी के विचारों में तुम्हारी प्रवेश कर गई, ये तो बड़ी अद्भुत मैं देख रहा हूँ। मैंने कोई अद्भुत नहीं, ये आपकी कृपा है जो महाप्रभु के प्रचार और आचार और प्रेम धर्म के प्रति हम लोगों को कुछ लोभ उत्पन्न ना हुए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। इनके जीवन के संबंध में बहुत कुछ है, हम लोग शाम को 4 बजे से आरंभ करें तो बहुत देर हो जाएगी, वैष्णवों को भी कष्ट होगा, 1 बज गया, इसलिए सबके चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कुल गलती ग्रहण न करेंगे। अभी सब अभी जल्दी से वहाँ पर यहाँ पर हम लोग पुष्पांजलि छठ दे करके और तब वहाँ पर मंदिर में आरती हो जाएगी और ले करके प्रसाद की
आरती करो ना, पहले
पहले यहाँ पर पुष्पांजलि हम लोग दें और उधर में साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद में गौर प्रणाम।
100 रुपये का नोट देने में प्रेमानंद का मन ही नहीं भरता। 100 रुपया देने से भी हजार बाजार जैसा
हो गया ना, अभी
डॉलर ही चलेगा,
डॉलर भी 100 डॉलर नहीं भरता। उसमें 5 रुपया दिया और बड़ा बाबू ने दिया 2 रुपया, उनसे अधिक रुपया पाते। कुछ दिन के बाद में प्रभुपाद से भेंट करवाया और फिर वो मठ में आने जाने लगे। एक बार वो बोले ये अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, इस्तीफा दे दूँगा, विवाहित थे, इस्तीफा दे दूँगा, मठ में आऊँगा। सब लोगों ने कहा नहीं नहीं प्रभु आप मत आइए, आप रुपये आ जाएंगे तो वो 5 रुपये में जो हमारा पूरा मठ चलता है वो भी चलेगा, फिर देखा कौन, आप तो रिटायर्ड हो ये चले जाएंगे फिर आप रुपया नहीं दे सकेंगे। तो वो हंसने लगे, हंस करके बोले कि अभी 5 रुपया देता हूँ, उस समय 500 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा। इसके बाद कुछ दिन के बाद में नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे करके चले आए और उन्होंने सबसे आते ही पहले एक मोटर कार खरीदी और जब जाते थे भिक्षा में तो कार से भिक्षा जाते, बड़े बड़े
सेठों
की दुकानों पर जाते और चुपचाप जा करके बैठ जाते। कह भाई ये कहाँ से आ गया, भाई 5 रुपया ले। अरे हम रुपया के लिए नहीं आए, हमारी कथा सुनो। फिर अच्छा से 100 रुपया ले लीजिए, 1000 रुपया ले लीजिए। अरे हम आए हैं तुमको भगवान की कथा सुना करके भगवत धाम ले जाएंगे हम, यही सुने। अच्छा और क्या आपको चाहिए, और क्या चाहिए आप बतलाइए। उन्होंने देखता है हमारा समय नष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा जैसे चावल दाल और ये ऐसी जरूरत है, बस गाड़ी पर लदवा करके वहाँ पर से ले आते हैं। और तब मटका ही एकदम रूपरेखा सब कुछ। वो गुरु महाराज जी को बहुत आदर करते थे, बहुत आदर करते थे। इसी तरह से इसलिए उन्होंने ये कहा पाषंड गजई का सिंह, इसलिए उनको कहा प्रभुपाद के विरोध में या गौड़ीय मठ के विरोध में यदि कोई लिखता था या कहता था तो ऐसा खंडन करके लिखते थे जिसका उत्तर उन्होंने के पास नहीं होता। कचहरी में भी एक दो बार केस हुआ, किंतु वहाँ पर भी उन लोगों को हारना पड़ा। तब जब इन्होंने सुना बड़ा प्रसन्न हुए और बोले जैसे तुम्हारा नाम हम पाषंड गजई के सिंह रखे, वो उम्र में अधिक थे उनका रखा।
गोसाई महाराज
ने ही उनका ये
रखा। उम्र में गोसाई महाराज अधिक थे,
हाँ बहुत अधिक थे। तो इस तरह से ये मठ की सेवा हमारे गुरुजी किस प्रकार से करते थे और तो सभी लोग आदर करते थे। कृति रत्न का लिए एक समय में प्रभुपाद जी का नियम था जो बीच बीच में सभा होती थी और सब ब्रह्मचारी लोग सन्यासी लोगों को बुलाते थे और देखते थे जो किसी किसी के प्रति खटर पटर है, परस्पर मतभेद, तो उन दोनों में से कहते हैं अच्छा तुम इनके संबंध में, तुम प्रेमानंद के संबंध में, और प्रेमानंद को कहा जैसे तुम इनके संबंध में। एक समय में विनोद उनका परमानंद जी से इनका किसी विषय में कुछ खटपट हो गया कुछ सेवा के लिए, तो इन्होंने कहा विनोद बिहारी बोलो परमानंद का गुण भी जितने हैं वो सब बतलाओ कैसा ये सेवक है। तो उन्होंने पहले ही वंदना श्लोक ने किया मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं जगत कृपातमहं वंदे परमानंदम। व्याख्या की वो जो परमानंद जो माधव का सेवक है ऐसा अर्थ किया, और वो परमानंद जो मुख को बाचाल कर देता है, पंगु को पर्वत का लंघा देता है और अंधे को सब कुछ दिखला देता है, ऐसे परमानंद जी जो माधव के सेवक हैं उनको मैं वंदना करता हूँ। सब लोग कान खड़े हुए सुन लीजिए क्या बोल रहा है। और इसके बाद में उन्होंने कहा अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ कृषाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म। और वेदांत का आनंदमय अभ्यासात इत्यादि सब लेकर के ऐसी सुंदर थोड़े समय में ही ऐसी सुंदर व्याख्या की सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसमें प्रभुपाद ने प्रसन्न होकर के इनको इनका नाम कृति रत्न दिया। कृतियों में यह रत्न, कृति माने भक्ति रूपी कृति का यह रत्न है। और उनको वेदांत का सारा ग्रंथ जो उनके पास में था वो सब इनको दे दिया, जैसे तुम इसका अतिरिक्त कोई नहीं देखता है जैसे कोई पढ़े और इसका कोई समझे हैं।
अभी कहाँ है वो सारा
वो तो इसीलिए तो गड़बड़ हुआ जब मायापुर को छोड़े तो अनंत वासुदेव और उनके ये सब जो थे पाषंड सब सबको उन्होंने लेकर के रख दिया।
इनको जो ग्रंथ दिया उसको भी गंगा जी ने फेंक
दिया? नहीं वो सब नहीं, भागवत को फेंका, चैतन्य चरितामृत को फेंका, जिसमें हमारी ये गुरु परंपरा मध्व के अनुकूल ये सब फेंका, और जो जो सहजियों का विचार था उसका खंडन था इसलिए उनको फेंक दिया था, मरा इसीलिए। तो हाँ एक बात और कौन सी थी क्या कह रहा
था
आनंद वासुदेव उनका
उपाधि दिया था कृतियों में रत्न, कृति अर्थात कृति का व्याख्या कर रहे थे।
वो भूल गया मैं प्रश्न, बहुत अच्छी चीज है
ये वेदांत लिया आनंद सब लोग ना लोग ले लिए
चोर के धर छिलो
ये वेदांत की पुस्तक कहाँ गई, जबकि वहाँ से जब आए इनके इन लोगों के ऊपर में 15 आदमी जो मुख्य प्रभुपाद के सेवक थे उन पर उन लोगों ने मर्डर का केस कराया, जानबूझ के एक आदमी मर गया ऐसे ही
इन्होंने इन लोगों ने सपने मारा है,
खजूर पेड़ में उठकर रस पा
लगा दिया था। तो उस समय में इनके विरुद्ध में हाई कोर्ट तक केस चला था, किंतु उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सके थे। तो इसी के प्रसंग में मैं क्या कर रहा था, तो उस समय में ये पुस्तक लेकर के जब आ रहे थे गाड़ियों पर लाद, एक गाड़ी पर वेदांत का सब पर, तो उसने लोगों से कह करके अपने आदमियों से उसको लेकर के खाली करा करके रख दिया, नई पुस्तक दी। इसके बाद में जब मथुरा मठ स्थापन हुआ, उस समय में उसका एक सबसे प्रधान चेला था,
किसका,
हरिदास,
किसका,
रहते
नहीं मुकुंद विनोद बाबा जी,
नहीं नहीं
उनके शिष्य थे,
वो उनके शिष्य थे राधाकृष्ण, अब तो मर गए, गौड़िया मठ के प्रधान शिष्य में अवधानी भी था, दक्षिण भारत का रहने वाला था। तो वो कलना में एक बहुत बड़ा भारी मकान लिया था, तो मकान लेने के बाद में उन लोगों से, अब जब गत हो गए अनंत वासुदेव, तो वो मकान उनके पक्ष वाले दखल कर लेना चाहते थे।
किसके पक्ष वाले?
अनंत वासुदेव वाले। अब इनसे कुछ बन नहीं रही थी, तो इन्होंने कालना में जो खरीद लिया वहाँ पर अनंत वासुदेव इत्यादि सुंदरानंद विद्या विनोद प्रभृति सभी उस वहाँ पर जाते थे कालना में उस घर पर। तो वो जब इन लोगों में परस्पर में खटर पटर हुई, तो वो हमारे गुरु जी के पास में आया, बोले जी गुरु जी आपको मैं दे देता हूँ, आपको जो इच्छा है सौ रुपया दे देंगे। उस समय उसका 10-15 हज़ार रुपया, 10-15 नहीं 25 हज़ार उस समय उसका दाम था। उन्होंने कहा दिया जैसे आपके नाम से रजिस्टर कर देते हैं तब आपके भय से कोई नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने गुरु महाराज जी के नाम से बिना पैसे का ही रजिस्टर कर दिया और कहा जी जब आपको हो आप पैसा दे देंगे। गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, ले लिया। इसके बाद में हमारे 4-5 गुराचंद बाबा जी इत्यादि और सब लोगों को वहाँ पर रख दिया। अब वो बाबा जी महाराज बीच बीच में आकर के तगादा करता था हमसे, जैसे आपके गुरु जी ने अभी दिया नहीं, तो हमको बड़ा खेद होता था कि भाई गुरु जी तो अपने बात के बड़े पक्के हैं, ये जब कहें होंगे तो जरूर दे देंगे। तो हमने उससे गुरु जी से पूछा कि इसका वो रुपया क्यों नहीं दिया जाता है, मैं मथुरा से लेकर के उनको दे दूँ, जब कहता है तो हमको बड़ा दुख होता है। नहीं नहीं चुपचाप रहो, कहे क्यों, आते हमारी वेदांत की पुस्तक जो गुरु प्रभुपाद जी ने दिया था, इसके गुरु जी इत्यादि सब लोगों ने मिल करके हमारा वो उसको रुकवा दिया, तो कोई बात नहीं है हम इसी के द्वारा वो पुस्तकों को हम ले आएंगे, इसको एक पैसा मत देना। फिर उसी से वेदांत इत्यादि का सब ग्रंथ किया, फिर बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी वहाँ पर की, नहीं नहीं नवदीप में वही लाइब्रेरी है, और
है सारा ग्रंथ आ गया है
नहीं, उसके बदले में फिर दूसरा ग्रंथ ले लिया है, वही ग्रंथ सब पुलिस लिया। और मथुरा में प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे मुकुंद बिहारी,
मुकुंद विनोद बाबा जी
भिक्षा करते थे ना उनके साथ,
मुकुंद विनोद बाबा जी
बड़े तीव्र मस्तिष्क, पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, कखा गह नहीं जानते थे, गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज की तरह। इन सुंदरानंद विद्या विनोद को, हमारे गुरु जी को, अनंत वासुदेव को, परमानंद को और सब लोगों को बुलाते थे, बस ऐसो ऐसो से बसो बस, आज के प्रभुपाद की बोले छन बोलो तो, ये लोग बोलते तो कहते तुम्हारा कोला पूछे छो,
घोड़ा दिन
कुछ ही तुम्हारा पूछो नहीं, ऐसे वो थे। इन लोगों को जो देखो कितने बड़े बड़े विद्वान, फिर उसको सरल सहज भाषा में उन लोगों को समझाते थे। वो अपने वृद्धावस्था में करीब करीब 70-80-90 वर्ष की उम्र में वो समस्त वेदांत का और हमारे गौड़ी हमारे मथुरा में जो कुछ पुराने ग्रंथ हैं वही करीब करीब 4-5 ट्रक पुस्तक लेकर के वहाँ पर आए। बोले जब विनोद गुरु महाराज जी को तभी विनोद कहते हैं और इतने प्रतिभाशाली गुरु जी, विनोद देखो तुम्हें हमारे बहुत सेवा करो छो, तो हमें देखी जैसे हमारे को शिष्य नहीं, हमारा कोई शिष्य नहीं है और एक ही शिष्य आया ही वो भी ठीक शिष्य नहीं है, ये लोग पुस्तकों को लेकर के बाजार में बेचेंगे और उसमें नमक मसाला बांध करके वो सब देंगे, इनका कुछ मूल्य नहीं जानते हैं, न पढ़ेंगे न लिखेंगे, इसलिए मैं सारी पुस्तक लेकर के वेदांत और इनका
संदर्भ
और सब जितने पुराने ग्रंथ हमारे यहाँ हैं मथुरा में वो सब लेकर के बोले जैसे तुम यहाँ पर रख लो और अच्छी तरह से रखना, हमको जब जरूरत होगी हम उसमें से ले लें, अब मैं वृंदावन में ही रहूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, वृंदावन में भजन करके इसको छोड़ दूंगा। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उनको अलमारी साथ ही साथ में खरीदा और खरीद करके सबको गुरु जी के घर में ही ये सब रखी गई। कुछ दिनों के बाद में, तीन चार दिन के बाद में, वो बाबा जी नाथ चौकी में ऐसे ऐसे कर और कृष्ण 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 कह करके एकदम तन्मय हो रहे हैं, जैसे महाप्रभु जी का भाव। और रात में ऐसी दशा हो गई कि अब मरे अब मरे, सब समय भाव में भी हुए। इसके बाद में गुरु जी को उन्होंने कहा कि मैं वृंदावन में थोड़ा सा दर्शन करना चाहूँ। गुरु महाराज उसी समय में व्यवस्था कर दी और वो वृंदावन में आए और दो तीन दिन के बाद में ही बस अप्रकट लीला में चले गए। हाँ, वो सब पुस्तकें गुरु महाराज ने हमको वो सब सुंदर, मैं सारा जीवन में पुस्तकों नहीं कर सकता था संग्रह। मैं सोचता हूँ अच्छा मान लें कि इतनी पुस्तकें हमने संग्रह की अच्छी अच्छी जो कहीं दुर्लभ है, अब नवद्वीप में भी वो चीज़ें नहीं हैं। गुरु महाराज जी कभी कभी यहाँ का संदर्भ इत्यादि जो हमको दिए थे वो जब जरूरत होगी तो उसको लेकर के अच्छे हमको ये देगा, हमको ये अद्भुत तो आप करें जिससे तुम देगा आपकी चीज़। तो ऐसे वो ले जा करके रखते थे और उस पर सब में लाल दाग है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पुरानी वाली में जिसका गुरु महाराज का दिया हुआ मार्क नहीं।
इसमें आर 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 आई पी वी आई पी वी आई वी वी आई पी
ये सब में लिखा है। कब पढ़ते थे कब क्या करते थे उनका कोई ठीक नहीं। एक बार अनंत वासुदेव, उस समय प्रबल प्रताप उनका, तो गुरु महाराज जी वो भक्ति तत्व संदर्भ ले लिया पढ़ने के लिए, दे करके वो बिगड़ गए इन पर। ये क्या कर पड़ता है ये समझ में आएगा, ये समझ में नहीं, लो दो। तो कहीं समझ में किसी को नहीं आ सकता दूसरे आदमी को, अतः इतना सहज नहीं है। इसको पढ़ा अच्छा तो इसमें से पूछेंगे बतलाएगा, अतः तू जहाँ से आपकी इच्छा पूछी। जब उन्होंने पूछा एकदम ऐसा धड़ाधड़ उत्तर दिया है कि वो देख करके चमत्कृत हो, पुस्तक रख दिया उनके पास। और तब अपने शिष्यों को कहते थे ये यदि कुछ लिखना है साहित्य वैष्णव साहित्य तो जाओ उसकी भाषा लो। गुरु महाराज जी का भाषा देखना गौड़ियों में
विरह मंगल
कितना ऐसे ही जो लिखते थे। हजार आदमी परिक्रमा में आए हैं और तरह तरह से सब व्यवस्था करा रहे हैं। हम लोग उस समय छोटे छोटे नादान बालक जैसे, बामन महाराज गणेश थे वो कागज कलम लेकर के पत्रिका के लिए अंतिम संपादकीय लिखना है एडिटोरियल, और उस समय हजारों लोग मेदिनीपुर से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, चित्त उसमें स्थिर नहीं सकता। बामन महाराज का दिन नहीं तब कल छपना है और आज ही कल वहाँ जाएंगे हम लोग नरसिंहपल्ली और भी प्रबंधन नहीं हुआ वहाँ पर देना है और उसी में बैठ करके और लिखा। न कोई ग्रंथ की जरूरत है न कोई चीज़ की जरूरत है, कुछ नहीं, ऐसे सुंदर लिखा। अब बामर महाराज का लिखना ऐसा जो एकदम कोई गलती हर्षी दीर्घई घर घर में देखने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज ने एक बार बोल दिया, इन्होंने लिख दिया, प्रेस में चला गया, करेक्शन करने की भी जरूरत नहीं, इतना सुंदर वो लिखा थे। वैसे बागमी थे और वैसे सुंदर लेखक थे। अभी बतलाया ना जो प्रभुपाद जी की मंगल आरती निशांत लीला का संबंध में, वो
मंगल
आरती
प्रभुपाद
जी की आरती तुलसी की आरती, कैसा सुंदर सुंदर सब उन्होंने लिखा। एक बार कह रहे थे जो हमको गोड़ी हमारे मठ के सब पुराने लोग हमारे पास में आए, आप देवानंद गौड़ीय मठ और गौड़ीय वेदांत समिति स्थापन को अपना जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों? आप यदि इन सब मैनेजमेंट में नहीं होते, आप कितना ग्रंथ का सृजन करते और क्या क्या करते, इसका कोई भी सीमा नहीं। और सचमुच में ऐसी बात होती, जब गुरु महाराज जी थे वो कितने सुंदर लिखते थे, यदि उनको मैनेजमेंट और व्यवस्था और प्रचार में नहीं जाना होता ना, जाने कितने ग्रंथ लिख दिए होते, क्या क्या किए होते। उस समय के जो सन्यासी ब्रह्मचारी वो समय थे, हम लोग उस समय में कैसे थे, ज्ञान की पोका ना जुगनू को देख करके ऐसा लगता था अनंत उनका दिव्य ज्ञान। हम लोग को उस समय में कहाँ दूर बैठते थे और आज हम लोग आज ही हम लोग सबके मातब्बर हो गए। बोलो कौन बोले, प्रेमानंद ब्रह्मचारी जी। अच्छा अच्छा बोलो। और उसके बाद में कविकर्ण पूर्ण ने अपने ग्रंथ में उसको दिया, और इसके बाद में बलदेव विद्याभूषण ने परमेय रत्नावली में ये दिया। इसी को प्रभुपाद ने फिर अनुवाद किया और उसको दिया है। उन्होंने सन्यासियों का नाम रखा अपने, भक्ति वेदांत बामन, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत असत्य, और गौड़ीय वेदांत समिति का नाम रखा गौड़ीय वेदांत समिति। किस लिए रखा? इसलिए रखा कि गौड़ीय वेदांत बलदेव विद्याभूषण जी का गोविंद भाष्य है। गोविंद भाष्य में कृष्ण भक्ति की चरम सीमा तक का वर्णन किया गया है। वेदांत का तात्पर्य है गोविंद जी की सेवा, यही उसका मूल प्रतिपाद्य विषय है। अनावृत्ति शब्दात् शब्द से ही अनावृत्ति होती है। वो शब्द क्या? शब्द ब्रह्म क्या? कृष्ण नाम, गोविंद का नाम। कृष्ण नाम में, गोविंद नाम में कुछ वैशिष्ट है। कृष्ण नाम में मदन मोहन जी हैं, उसे जीवों का संबंध है, इसे संबंध होता है। विवाह से पहले संबंध स्थापन करते हैं, विवाह होने के बाद में स्त्री की जो क्रियाशीलता होती है, तब वो वैसे ही कृष्ण जब गोपियों के साथ में उनकी सेवा को ग्रहण करते हैं तो वो गोविंद हो जाते हैं, और जब उनके वशीभूत हो जाते हैं तब हैं गोपीनाथ जी। इसलिए वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है भागवत का जो प्रेम है गोपियों का, वही अंतिम प्रतिपाद्य वस्तु है। इस चीज को ठीक रखने के लिए उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति रखा और गौड़ीय भक्ति वेदांत रखा। वेदांत का तात्पर्य अधिकांश लोग 99% लोग यह समझते हैं वेदांत ज्ञान का ग्रंथ है। इसलिए जितने अद्वैतवादी मायावादी है अपने को कहते हैं वेदांती, और दूसरे जो भक्ति वाले हैं वो वेदांती नहीं कहते थे, डरते थे ये हम लोग तो उसमें चले जाएंगे। गुरु महाराज जी ने कहा जे खूब छाती फुला करके बोलो जे हम गौड़ीय वेदांत वाले हैं। वेदांत गौड़ीय वैष्णवों का या वैष्णवों का अपना संपत्ति है, ये ज्ञानियों का ये ग्रंथ नहीं है, निर्विशेषवादियों का ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये भागवत उसी का अकृत्रिम भाष्य है। भागवत में जितने रस हैं वो जरूर उसमें हैं, नहीं तो मूल ही में नहीं रहेगा तो इसमें क्या रहेगा, भागवत में क्या यहाँ से आएगा। इसलिए वेदांत का तात्पर्य कृष्ण की चरम भक्ति उसमें पर्यवसित होता है। इसलिए जगत में यह प्रचार करने के लिए वेदांत करने से निर्विशेष ज्ञान मत समझो, यह भक्ति परक है। वेदांत में 750 सूत्र हैं, उसमें कहीं भी ज्ञान है 550, उसमें कहीं भी ज्ञान शब्द का उल्लेख है ही नहीं है, कहीं नहीं है, तो फिर वो वेदांती अपने को कैसे कहेंगे? यदि वेदांती हैं तो हम लोग कौन? महाप्रभु की धारा वाला जो वैष्णव हैं यही लोग यथार्थ में वेदांती हैं, क्योंकि वेदांत का तात्पर्य होता है गोविंद की सेवा ही वेदांत का और श्रीमद्भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसलिए हम लोगों का भी नाम रखा गौड़ी वेदांत भक्ति वेदांत, और समिति का भी नाम रखा
गौड़ी वेदांत।
एक बार किसी पूज्यपाद श्रीधर महाराज ने ही नामी का बतला देता हूँ, उनसे पूछा आपने भक्ति वेदांत क्यों नाम लिखा, ये तो बहुत घटिया नाम है, ये तो ज्ञान परख हो गया। गुरु जी ने कहा नहीं, प्रभुपाद जी ने वो उनका नाम ऐसी भक्ति वेदांत, हाँ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज उनका उपाधि गुरु प्रभुपाद ने ही उनका दिया था भक्ति वेदांत उपनाम, जैसे सेवा विग्रह मेरा नाम बामन महाराज जी का भी कुछ था
सज्जन सेवा
किसी को कुछ भक्ति बांध ऐसे ही उनका नाम रखा था। पलम का नाम क्या था?
अभय चरण
दे नाम था, उन्होंने भक्ति वेदांत उनकी उपाधि दी। तो वैसे ही हमने रखा था, ये क्या उत्पात हमने कर दिया। हम इसी चीज को प्रचार करना चाहिए, हम लोग बलदेव विद्याभूषण के धारा में हैं, वो रूपानुगम में श्रेष्ठ हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। इस चीज़ को प्रचारित करने के लिए हमने भक्ति वेदांत और गौड़ीय वेदांत समिति या गौड़ीय वेदांत वो पुस्तकालय वहाँ पर बना है
ग्रंथागार
इत्यादि सब गुरु महाराज जी का नामकरण किया हुआ। इसलिए वो चाहते थे ये इसी के रूप में ये भक्ति वेदांत के रूप में ये प्रचार हो। वेदांत ये ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, निर्विशेष ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति का चरम ग्रंथ है। इस प्रचार करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक बार गुरु जी की मैया बीमार पड़ी। वंस द मदर ऑफ अवर गुरुदेव बिकेम इल एंड ही गेव ए लेटर टू अवर गुरुदेव। हमारे गुरु जी के लिए पत्र लिखा, प्रभुपाद जी के नाम से लिखा, प्रभुपाद जी को उसमें लिखा। तो उसमें लिखा था ये अब मेरा अंतिम समय है, अब मैं नहीं बच सकता, आप कृपा करके विनोद को थोड़ी सी देर के लिए, एक घंटे के लिए हमारे पास में भेज दीजिए। प्रभुपाद जी की आंखें भर आई और उन्होंने कहा विनोद सुनो, तुम्हारी मैया का पत्र आया है, तुम उसको जाकर के एक बार देखाओ, भेंट कराओ। गुरु जी कुछ बोले नहीं, वहाँ से चले आए। उन्होंने समझाया जे जाओ। प्रभुपाद की शायद ऐसी इच्छा थी या क्या थी, गुरु जी चुपचाप सुन करके और रह गए, गए नहीं। प्रभुपाद से एक दिन भेंट ही नहीं की, उनके पास ही नहीं है, दूर से जा करके प्रणाम कर लो और एक घर के कोने में बैठ करके अपना